माता जी, इसमें से कोई दोहराना चाहेगा श्लोक शब्दार्थ? यदा जब अक्षयी ही इंद्रियों द्वारा चरितान भोगे गए सुख ध्यायन चिंतन करते हुए कर्माणि कर्म आचिनुते करता है असकृत सदैव सती कर्मणि। जब भौतिक व्यापार होते रहते हैं अविद्यायाम मोहवश बंधह बंधन कर्मणि कर्म में अनात्मनः भौतिक शरीर का। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है और ऐसा करने से वह भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ जाता है। तात्पर्य, सूक्ष्म शरीर में रहते हुए हम इंद्रिय तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। ये सारी योजनाएं मन में बीज के रूप में अंकित होती रहती है। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेकों शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। यह कर्म बंधन कहलाता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता, किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते जाते हैं। ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। जीव अपने पुराने भौतिक कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने की बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार कर्म के फल से उबरा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के शनिवार प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। सर्वप्रथम तो मैं उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि भगवत के इस उच्च विषय वस्तु पर कुछ बोल पाऊँ। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद से 29वें अध्याय का 78वां श्लोक है ये। तो ये जो पुरंजन उपाख्यान है उसमें अंतिम अध्याय, पुरंजन उपाख्यान के 5 अध्याय जो है उसमें अंतिम अध्याय जो है यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये अंतिम विभाग चल रहा है एकदम। अभी कुछ श्लोकों में ये जो पुरंजन उपाख्यान ये जो है समाप्त हो जाएगा। और पिछले श्लोक से बन एव मनुष्येन्द्र भूतानाम भवभावनम, ये पिछला श्लोक था, वहां से तो एकदम उपसंहार चल रहा है इस उपाख्यान का। नारद मुनि जो बोलेंगे प्राचीन भरिषत को, उसमें से ये 2nd last verse है। बस इसके बाद और एक श्लोक बोल के नारद मुनि जो है अपना उपदेश समाप्त करेंगे। तो उपसंहार कहते हैं समाप्ति या निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष में जो नारद मुनि बोलना चाहते हैं उस चीज को वो एकदम प्रकर्षता से प्रस्तुत करेंगे, खास करके अंतिम श्लोक में, कि इसीलिए हे राजा तदस्तद अपवादार्थम, कल का श्लोक है वो, तो कि भक्ति ही कैसे इस सारे कर्म बंधन से छूटने का साधन है, ये चीज जो है प्रस्तुत कर रहे हैं उपसंहार के रूप में, निष्कर्ष के रूप में। और फिर इस प्रकार से निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे कि तुरंत इस पूरे उपदेश के पश्चात, देखिए ये उपदेश कुछ घंटे चला होगा नारद मुनि, हम लोग हालांकि बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नारद मुनि जब श्लोक बोले उनको सारे, तो कुछ घंटे चला ये उपदेश, हो सकता है 1 या 2 घंटे जो भी पुरंजन उपाख्यान के सारे समस्त श्लोकों को मिला के। और फिर इसके पश्चात जो है उठ के प्राचीन भरिषद जो है वो कहता है कि ठीक है अभी जो भक्ति है उसका जीवन में अनुसरण करूंगा, ऐसा। तो एकदम इफेक्ट वो निष्कर्ष का जो है वो होने वाला है इस नारद मुनि के दक्ष प्रचार के पश्चात। तो ये दक्ष प्रचारक का गुण है ये, है कि नहीं? जिस प्रकार का जो कैंडिडेट है, जिस प्रकार का व्यक्ति है, जिस प्रकार की व्यक्ति है, उसके अनुसार वो प्रचार करना जो है वो जानते हैं, लोग जिस स्तर पे है उससे उठाना, ये दक्ष प्रचारक का बहुत बड़ा गुण है। कभी कभार कुछ कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं, तो कोचिंग क्लासेस वाले लोगों को, छात्रों को लेते हैं, तो लेते ही है सबसे बढ़िया छात्र, एकदम कट ऑफ होता है 90-95%। तो आप उनको लेके आ गए अंदर और फिर वहां से उनको और ऊंची सफलता प्रदान करते हैं, तो वो तो ठीक है, लेते हुए तुमने कुशाग्र बुद्धिमत्ता वाले छात्र ले लिए। लेकिन अगर मानिए कोई कोचिंग क्लास वाला ऐसा एडवर्टाइज कर रहा है, सब 50% वालों को, 40% वालों को हमारे इधर एंट्री है, और वहां से हम लेके जाएंगे आपको 99% तक, मतलब एक सफलता की सबसे ऊंची जो सीमा है उसको प्राप्त कराएंगे, तो साधारण छात्र लेके उसको उत्तम छात्र बना रहे, तो वो तो विशेष है, बहुत विशेष। तो ये नारद मुनि जैसे प्रचारक की विशेषता है, और उन्हीं की परंपरा में श्रील प्रभुपाद जैसे प्रचारक की विशेषता है। एक और प्राचीन बरिषद जैसा व्यक्ति कर्मकांड में निपुण, सुपर विद्वान, और दूसरी ओर मृगारी जैसा कोई शिकारी, या फिर एक और प्रहलाद महाराज जैसे एकदम जन्म से महाभागवत, और दूसरी ओर कोई व्यक्ति जैसे रत्नाकर, वो डकैती करने वाला। तो किसी भी प्रकार के छात्र को लेके नारद मुनि उसको एकदम अव्वल दर्जे का छात्र बना सकते हैं, ये एक दक्ष प्रचारक का गुण यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो देखिए प्रचार में भी, हालांकि मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि प्रचार में भी बहुत जरूरी है कि व्यक्ति के स्तर के अनुसार बोल के उसको प्रेरित करे। कभी कभार, अभी मुझे एक मेरे पहचान के एक भक्त बता रहे थे, कभी कभी हम लोग सत्य बोलना चाहते हैं प्रचार में, सत्य ऐसा बोलते हैं, लेकिन कि अभी उसको प्रचार कहे कि क्या कहे, कुछ और कहे, ये प्रश्न आ जाता है। जैसे उन्होंने बोला कि अरे प्रभु, मैंने उस व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति आया था मंदिर में, उसको ऐसा स्मैश किया, ऐसा उसका खंडन किया, अभी कभी मंदिर की ओर देखेगा भी नहीं ऐसे अभी कभी देखेगा नहीं मंदिर की ओर। अच्छा, मैंने बोला मंदिर की ओर देखेगा नहीं तो फिर मंदिर भी नहीं आएगा। हाँ अच्छा, मंदिर भी नहीं आएगा, तो ये क्या प्रचार है, ऐसे ऐसे स्मैश किया, अभी कभी भक्तों की ओर आंख उठा के देखेगा नहीं इस प्रकार से। तो देखिए ये बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में कहते हैं द पॉइंट इज नॉट टू जस्ट गेट इट राइट, बट द पॉइंट इज टू गेट इट अक्रॉस. कभी हम बोलते हैं तो केवल सत्य बोलना ये सफलता नहीं है प्रचार की, लेकिन ऑल्सो टू गेट इट अक्रॉस, मतलब लोग उसको समझ पाए. नहीं तो फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, डेड डिसअपियर्ड. डेड डेड मतलब उसको भी संजीवनी विद्या से फिर से जीवित करेंगे, लेकिन डिसअपियर्ड वो दिखता ही नहीं फिर कभी. तो ये बड़ा खतरनाक है. तो यहाँ पे नारद मुनि जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट क्योर्ड, हैप्पी एंड स्माइलिंग, ये इस प्रकार का नारद मुनि का प्रचार है ऐसे. तो आज के इस सत्र में तीन विषयों पर चर्चा करेंगे. एक तो पहले इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे अविद्या और उससे जो कर्म है वे बंधन के मूल कारण है. फिर इसके पश्चात इस अविद्या के निरसन के लिए, आज के श्लोक में अविद्या आ रहा है, कर्मणि अविद्यायाम, इस अविद्या के निरसन के लिए कैसे देश काल पात्र के अनुसार हमारे आचार्य प्रचार करते हैं इसकी चर्चा करेंगे. और उस देश काल पात्र के प्रचार में जो परंपरा है और नूतनता है, देयर इज ट्रेडिशन एंड देयर इज इनोवेशन, तो इन दोनों का संगम कैसे हमें बहुत जरूरी है इसकी चर्चा करेंगे. और अंतिम निष्कर्ष के रूप में कैसे श्रील प्रभुपाद ने हमको ये करके दिखाया, इस प्रकार का परंपरा और नूतनता का संगम जो है इसकी चर्चा करेंगे. तो आज का ये जो श्लोक है, यदा क्षयश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत, तो पिछले श्लोक से ऑलरेडी इसमें निष्कर्ष का मुद्दा जो है आ रहा है. मन एव मनुष्येन्द्र भूतानाम भूतानाम भवभावनम, मन ही है राजा, मन ही व्यक्तियों के संसार में बद्ध होने का कारण है, ऐसे पिछले श्लोक से नारद मुनि जो है निष्कर्ष के रूप में बता रहे. तो जब यहां कहा जा रहा है यदाक्षय चरितान ध्यायन, जब अक्षय ही यानी इंद्रियों के द्वारा कर्मानी अचिनुते कर्म करता है, एक जीव है, तो तब क्या होता है जब ऐसा कर्म कर रहा है, तब चरितान ध्यायन, चरितान यानी विषय सुखों को कहते हैं, विषय भोगों को, चरितान उपभोक्तान ध्यायन ऐसे कहा है. तो वो जो इंद्रिय विषय है उनको ध्यान करता हुआ जब इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, तो मन जो है उस इंद्रिय विषय पे चिंतन कर रहा है. इसमें चरितान ध्यायन कौन ध्यान कर रहा है, वो मन ध्यान कर रहा है. मन के द्वारा उन इंद्रिय विषयों पे ध्यान करता हुआ व्यक्ति जब ऐसे इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, किस स्थिति में, सती कर्मण या अविद्यायाम, लेकिन कर्म कैसे है उसके अविद्या में है, पूरे अविद्या में लिप्त है. तो ऐसे अविद्या रूपी कर्म के कारण वह जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी कह रहे हैं कि बीज जो है वासना रूप जो भोगने की इच्छा है वो मूल अविद्या से जनरेट होती है. अविद्या काम कर्म भी भवेस्मिन कृष्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणा अरहानि कृष्ण निधि केचन, कुंती देवी भी कहती है. तो ये अविद्या जो है मूल जीव का ज्ञान भगवान के प्रति, अपने स्वयं के स्वरूप के प्रति, इससे काम रूपी बीज जो है वासना जो प्रभुपाद कह रहे हैं, और उसके कारण फिर कर्म करता है वो. और इसलिए प्रभुपाद जी अनादि कर्म फले वगैरह कोट कर रहे हैं, यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं. तो देखिए अविद्या ही सारे बंधन का कारण है, यह इस श्लोक में आचार्य भी समझाते हैं तात्पर्य के रूप में. तो अविद्या की जब बात करते हैं तो जीव गोस्वामी और हमारे अन्य आचार्यों ने भी इस श्लोक के तात्पर्य में, इस श्रृंखला में उपसंहार की, यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते, इस श्लोक को उद्धृत किया है. तो एक्चुअली देखा जाए तो व्यासदेव की समाधि जो है सप्तम अध्याय में भागवतम में वर्णन आता है इसका. उस व्यासदेव की अध्याय की उस समाधि के श्लोकों में भक्ति योगे न मनसी से लेके भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम, यहां से लेके आगे बढ़ते हुए यया सम्मोहित जीव, तो इस पांच श्लोकों की श्रृंखला में जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में अपने 63 अनुच्छेद यानी मानिए जैसे पैराग्राफ जैसा है, तो 63 अनुच्छेदों में 20 अनुच्छेद के ऊपर इसके ऊपर चर्चा की है अविद्या. 20 अनुच्छेद यानी अगर आपको उसको A4 पेजेस में डालना है तो 100 पेजेस की कमेंट्री लिखी है केवल. अविद्या कैसे जीव को इस प्रकार से बंधन करती है और भक्ति उसका कैसे उपाय है, इसके ऊपर जीव गोस्वामी ने 5 श्लोक केवल भक्ति योगे न मनसी से लेके सा कृत्वा संहिताम यू नो वो जो श्लोक है, इस 5 श्लोकों पे 100 पेजेस लिखे हैं जीव गोस्वामी. इस अविद्या के बारे में बताने के लिए। तो देखिए कैसे ये जो अविद्या है या माया है, वो जीव जो कि स्वाभाविक रूप से परे है अविद्या के, जीव परा प्रकृति है, माया अपरा प्रकृति है, लेकिन तो भी परा प्रकृति वाला जीव अपरा प्रकृति में कैसे फंस जाता है, इसके ऊपर जीव गोस्वामी ने इतनी चर्चा की है विशाल। तो एनीवे कहने का ये तात्पर्य है कि वहां पे जीव गोस्वामी भी उद्धृत करते हैं कि मैत्रेय मुनि को उद्धृत करते हैं तृतीय स्कंद से, सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। एक्चुअली माया इस प्रकार से कार्य करती है ना, सायम भगवतः माया, ये भगवान की माया जो है, यन्नयेन विरुध्यते, वो तर्क के भी बहुत विरुद्ध कार्य करती है, तर्क भी उसके सामने चलता नहीं है, है कि नहीं। माया इस प्रकार से लोगों को विमोहित करती है कि वहां पे तर्क कुछ चलता नहीं है। कभी कभार लोग प्रेमियों की बात करते हैं भौतिक जगत में, तो बोलते हैं अरे प्रेम में पागल हो गया है, प्रेम जो है उसमें उसको समझ नहीं रहा है क्या सही है क्या नहीं है वगैरह से। तो भली सारी दुनिया उसको समझाने का प्रयास करे लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है, मतलब कोई भी अविद्या का कोई भी ब्रांड लीजिए उसमें। तो माया जो है इस प्रकार से भी मोहित करती है कि यन्नयेन विरुध्यते, कहा है उसमें तर्क वर्क कुछ चलता नहीं है ऐसे। तो इसलिए जो माया के लेटेस्ट ब्रांड्स है, देखिए अविद्या अपडेट होती रहती है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर रहता है, वर्जन 1.1, 1.2, 1.3, तो वैसे अविद्या के भी वर्जन है, जो माया प्रस्तुत करती है रीजनिंग, उसके भी वर्जन रहते हैं, एक 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 आते रहते हैं नए। और इस वर्जन को परास्त करना ये आचार्यों का कार्य है, नए नए वर्जन को एक्सपोज करना, उसका पर्दाफाश करना और उसको परास्त करना। इसलिए जो परंपरा है उसमें ज्ञान है वो इट्स नॉट स्टैटिक, जो श्लोक है इट्स नॉट स्टैटिक, क्या कहेंगे, गतिहीन नहीं है, वो गतिशील है, डायनेमिक है एकदम। श्लोकों को किस प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण अलग अलग देश काल पात्र में देना चाहिए, ये बहुत डायनेमिक चीज है एक्चुअली देखा जाए तो। कभी कभार लोगों को लगता है अरे ये श्लोक के ऊपर ऐसी व्याख्या की है आचार्यों ने वगैरह, और फिर आज के आचार्य या फिर शिल प्रभुपाद अलग कर रहे हैं। अरे हर एक आचार्य जो है वो अविद्या के उस वक्त के ब्रांड को परास्त करता है। अविद्या जो है उस वक्त क्या वहां पे वर्जन चल रहा है, उस अविद्या के वर्जन को परास्त करते रहते। देखिए बड़ा विशेष है, जीव गोस्वामी इसके बारे में लिखते हैं तत्व संदर्भ में। अभी देखिए तत्व ज्ञान मायावाद तत्व ज्ञान है, ठीक है, तो मायावाद तत्व ज्ञान कहता है सब कुछ एक है, लेकिन उस एक को क्या है करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अनेक सिद्धांत है। चीज बोल रहे हो आप केवल एक है, लेकिन वो एक क्या है इसके लिए अनेक सिद्धांत है। तो मायावाद, जैसे मायावाद को एक्सप्लेन करने के लिए बिंब प्रतिबिंबवाद है, अपच्छेदवाद है, दृष्टि सृष्टिवाद है, या फिर विवर्तवाद है, या अलग 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 वर्जन ऐसे एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक है सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो एक क्या है इस पर अनेकों मत है, उनके मतभेद है। और इससे भी विशेष शून्यवाद है, वो तो सब कुछ शून्य है बोल रहा है, लेकिन वो शून्य क्या है ही नहीं कुछ, शून्य यानी क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन वो शून्य क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए चार चार सिद्धांत है। बड़ा अमेजिंग है ना, क्या एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन चार सिद्धांत है उसको, कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करने के लिए चार चार सिद्धांत है। सौत्रांतिक बुद्ध जो बौद्ध तत्व ज्ञान है, योगाचार, वैभाषिक और माध्यमिक, ऐसे प्रकार के अलग अलग बुद्ध, और फिर उसके लेटेस्ट वर्जन जैन बुद्धिज्म वगैरह वो तो छोड़ ही दो, वो तो और नए 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 आते रहते। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जो माया है या अविद्या है उसके ऐसे अलग अलग वर्जन को हमारे, जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री गौ निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो हमारे आचार्य जो है उस प्रकार से श्लोकों के ऊपर टीका लिखते हैं कि जिससे कि वो वाला जो वहां पे प्रचलित जो वर्जन है, संस्करण है अविद्या का, उस संस्करण को परास्त करना चाहिए ऐसे। तो बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य एक महान, वो भी इन सारे तत्व ज्ञानों को, इन सारे तथाकथित सिद्धांतों को, 15 अलग अलग फिलॉसफी को एनालाइज किया है बलदेव विद्याभूषण ने अपने एक किताब में तत्वदीपिका नाम की। तो हर एक सिद्धांत बताते हैं और उसका दोष क्या है उसमें बताते हैं, और अंत में भागवत सिद्धांत के बारे में बताते हैं इस प्रकार से। तो जब मैं कहना यह चाहता हूं कि जब श्लोकों के ऊपर व्याख्या होती है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से अलग अलग उस पर दृष्टिकोण से अलग अलग देश काल पात्र के अनुसार व्याख्या होगी। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञाना असुरम भाव आश्रित। अभी ये चार प्रकार के लोग हैं कृष्ण के शरण में नहीं जाते, मूढ़ या और फिर माया अपरित ज्ञाना असुरम भाव आश्रित और नराधम, ये चार प्रकार के। अभी ये चार प्रकार के लोग कौन है एग्जैक्टली, इसके ऊपर सारे आचार्यों के अलग अलग मत है। किसको मूढ़ कहेंगे, किसको नराधम कहेंगे, किसको असुरम भाव आश्रित कहेंगे और किसको माया अपरित ज्ञान कहेंगे। बलदेव विद्याभूषण अलग कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग कहते हैं और शिल प्रभुपाद निश्चित रूप से अलग कहते हैं इस प्रकार से। तो कभी ये ऐसा प्रस्तुतिकरण जब देखते हैं लोग तो सोचते अरे ये क्या है, ये पारंपरिक इसमें नहीं आ रहा है करके, ये कैसा ऐसा इंटरप्रिटेशन है या किस प्रकार से ये लिखा गया है करके। लेकिन ये समझते नहीं है कि एक्चुअली शास्त्र केवल श्लोक नहीं है, स्क्रिप्चर इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट, इट्स ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट। प्रसंग और श्लोक ये दोनों में बहुत सुमधुर संतुलन होना चाहिए। हर एक कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो श्लोक है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, निरूपण किया जाता है इस प्रकार से। तो ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी के और आचार्यों के एक्सप्लेनेशन में ये चीज दिखती है कि किस प्रकार से ये जो स्टैटिक नहीं रखा है उन्होंने, उसको गतिशील रखा है वो जो तात्पर्य है उसके अनुसार। और चूंकि इस चीज को ध्यान में नहीं लेता है कोई, तो भले ही वही ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हो जो परंपरा में हो, लेकिन क्योंकि उसमें गतिशीलता नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि इसलिए श्रील प्रभुपाद को विशेष सफलता मिली, क्योंकि तात्पर्य इस प्रकार से लिखे गए हैं कि जो लोग जो है अपने जीवन में उसको संबंध जो है बना पाते हैं, अपने जीवन से बहुत उसको रिलेट कर सकते हैं, उसका संबंध जो है देख सकते हैं ऐसे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, शास्त्रीय ज्ञान जो है ना केवल डाउनलोडिंग है कि बस पढ़ लिया और बड़बड़ 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 बोल दिया ऐसे, लेकिन वो पता भी होना चाहिए कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है उसको रिलेट कर पाते। अब जैसे नारद मुनि यहाँ पे जो ज्ञान बता रहे इस पुरंजन उपाख्यान में, शाश्वत सत्य बता रहे, ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात कर रहे और अंत में शुद्ध भक्ति की भी बात कर रहे, लेकिन यह ज्ञान बोलते हुए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बोला है प्राचीन परिषद जो कर्मकांड में निपुण था करके, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि जिससे उसके कर्मकांड वाला ये जो सिद्धांत है उसका निरसन हो जाए। लेकिन वही अगर आप यह ज्ञान लेके आज लोगों को बताने लगोगे कि अरे ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं करने चाहिए, सोम यज्ञ नहीं करने चाहिए, या फिर अन्य अन्य जो भी अग्निहोत्र यज्ञ करने नहीं चाहिए, वैश्वानर यज्ञ नहीं करने चाहिए, वो उसने नाम भी नहीं सुने होंगे, ये क्या है वैश्वानर, मैंने वानर सुना है, वैश्वानर क्या है एकदम, या फिर पंचाग्नि विद्या, ये वो सब उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया है ज्ञान। तो देखिए आपको बताना पड़ेगा, तो ये श्रील प्रभुपाद करते हैं तात्पर्य में वो इंद्रिय भोग कैसे अच्छा नहीं है, कैसे जीवन में हम इंद्रिय भोग से वास्तविक सुखी नहीं हो सकते हैं, मन ही कैसे सारे बंधन में डाल देता है, ये सब चीजें बोल रहे हैं, इस प्रकार का वर्णन जो है वो कर रहे हैं ऐसे। तो ये चीज है, तो देखिए इस प्रकार से आचार्य देश और काल के अनुसार उसको प्रस्तापित करते हैं तत्वों को, सिद्धांतों को। कुछ कुछ लोगों की धारणा होती है कि इस परंपरा यानी एकदम संग्रहालय की तरह होनी चाहिए, म्यूजियम, ट्रेडिशन शुड बी लाइक अ म्यूजियम, ऐसे लोग सोचते हैं। म्यूजियम में कैसे होता है, संग्रहालय में चीजें बड़ी वैसी की वैसी रखी जाती है कि नहीं, जितना वो चीज वैसे के वैसा है उतना लोग कहते हैं हाँ बढ़िया है, क्या मेंटेन किया है एकदम संग्रहालय को ऐसे। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशन परंपरा के बारे में लोगों की ये धारणा होती है, एकदम बोलते जैसे था वैसे, गुड ओल्ड डेज एकदम, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, जैसे हाँ वो उस टाइप का रहना बोलना, वही खाना वही आइटम्स इस प्रकार से। तो ट्रेडिशन में निश्चित रूप से जरूरी है कि जो हमें परंपरा में ज्ञान दिया जा रहा है, जो तत्व दिए जा रहे हैं, उसमें तो कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उसके ऊपर। लेकिन देखिए दुनिया बदलती रहती है, जब हम लोग केवल एक परंपरा के एक संकुचित संग्रहालयवादी दृष्टिकोण को आसक्त हो जाएंगे कि परंपरा मतलब बस ऐसे ही, बस इसी प्रकार से और कुछ नहीं, तो फिर जो है वो लोग उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। रिलेट करना जो है बहुत जरूरी है संप्रदाय के इसमें। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी लोगों की इस प्रकार के धारणाएं रहती है, लोग सोचते हैं कि जैसे भक्ति यानी इस प्रकार के कपड़े, इस प्रकार के बोलना चाहिए, इस प्रकार का ही संस्कृति होना चाहिए, इसमें निश्चित रूप से ये सही है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। लेकिन खास करके कुछ लोग अगर कोई पारंपरिक बैकग्राउंड से आते हैं, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको लगता है इस्कॉन में ट्रेडिशन नहीं है, कल्चर नहीं, बोलते वो वाला फ्लेवर नहीं है, कल्चरल एकदम वो वाला जो ट्रेडिशनल एकदम, जो कि ट्रेडिशनल जगहों पे दिखता है वगैरह ऐसे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं वगैरह, लेकिन वो वाला चीज नहीं जो वहां पे है, ऐसे टिपिकल यू नो प्राचीन स्थानों में या धामों में वगैरह ऐसे। लेकिन देखिए कुछ सीमा तक बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए लोगों की भाषा बदल रही है, लोगों की विचारधारा बदल रही है, उसके अनुसार प्रचार करना श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है हमें। बताऊंगा मैं उदाहरण से, ये देखिए जब 2000 साल पहले सारे सिद्धांत लिखे जाते थे, भक्ति के बारे में चर्चा होती थी, तो वो संस्कृत भाषा ही सबसे प्रमुख थी, संस्कृत भाषा में लिखते थे सब कुछ, विद्वान ब्राह्मण आदि जो भी कोई थे वो संस्कृत भाषा में लिखते थे, अपने तत्व का निरूपण करते थे। तो जब बौद्ध और जैन दर्शन प्रसिद्ध हुए तो उसका कारण ये था कि इन लोगों ने पहली बार दर्शन को प्रादेशिक भाषाओं में लिखना प्रारंभ किया। तो चूंकि संस्कृत जो है हमेशा ही विद्वानों की भाषा रही है, तो ये प्रादेशिक भाषाओं में इस प्रकार से ग्रंथ लिखने से इतने सारे बौद्ध और जैन दर्शन के फॉलोअर्स बन गए, क्योंकि सारे लोग जो है उसको एकदम पढ़ पा रहे, देख पा रहे, रिलेट कर पा रहे। तो देखिए संस्कृत जैसी भाषा हो बहुत अच्छी है, उच्चतम है, लेकिन लोग ही बोल नहीं पा रहे, तो आपको जरूरी है कि उस प्रादेशिक भाषा में उसकी चर्चा करनी चाहिए। ऐसे तो कभी कभार इस्कॉन में आके भी लोगों का ऐसा ये रहता है कि अरे आपके यहाँ संस्कृत में क्लासेस नहीं होते क्या? अभी मैं बैंगलोर में था तो मेरे को याद है एक व्यक्ति था, एकदम ऐसे ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आया था, और ऐसा कॉफी का बड़ा कप था उसके पास, पूरा कॉफी भरता था, और मेरे डेस्क पे आके मुझे बोलता था इस्कॉन में आप लोगों को संस्कृत उच्चारण नहीं आता है, एकदम आके बोलता। मैं बोलता था पहले तो कॉफी फेंक के आ, फिर चर्चा करेंगे, तू पहले कॉफी फेंक के आ, वो जो है इस प्रकार। तो एक्चुअली बहुत बार बैकग्राउंड से आते हैं ट्रेडिशनल लोग, अरे लोगों की चाय कॉफी नहीं छूटती है, और लोग चर्चा करते इस्कॉन में संस्कृत नहीं आता लोगों को वगैरह, या संस्कृत उच्चारण नहीं कर पाते हैं ये वगैरह सारा इस प्रकार से। देखिए प्रभुपाद जिन्हें कल्चर जो दिया है, जिस प्रकार की संस्कृति दी है उसमें देशकाल पात्र के अनुसार दी है, तो बहुत जरूरी है कि हम भी इस चीज को समझें। सारे हमारे जो ग्रंथ थे वैदिक भाषा के वो संस्कृत में थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद के श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में उसी तत्वों को बंगाली में लिखा गया, और जहां उड़ीसा में प्रचार कर रहे थे तो उड़ीसा भाषा में लिखा गया, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने पहली बार अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बहुत सारे ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे, और प्रभुपाद ने सब ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे ऑलमोस्ट, गीतार गान आदि यू नो छोड़ के ये सब। तो जो जरूरी है जिस प्रकार का, आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए इस्कॉन संस्था ऐसा है हमारा कि वो सबको आकर्षित करना चाहता है निश्चित रूप से, लेकिन इस जगत में देखिए हमेशा ही वन मैन्स पॉइजन इज अनदर मैन्स फूड, और फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, ऐसे कहते हैं ना। हमेशा ही कुछ लोग रहेंगे कि जिनको कुछ ना कुछ यू नो दोष या इस प्रकार से चीजें जो है दिखती है आचारों के अंतर्गत ऐसे। तो मैं कहना यह चाहता था कि कभी कभार इस प्रकार का ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन इस्कॉन का हो सकता है ना दिखे। एक मेरे मित्र खास करके इस पे बात कर रहे थे, तो इसलिए भी मेरा ये विचारधारा जो था उसको विकसित किया मैंने, तो कि ट्रेडिशनल एकदम आप लोग ट्रेडिशनल नहीं हो एकदम करके। अभी ट्रेडिशनल नहीं कि हम लोग क्या इधर कीर्तन कर रहे हैं कि रॉक एंड रोल कर रहे हैं या जो भी पुराना जो भी संगीत होगा इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसको हमें देखना चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट के लिए एकदम सही है। प्रभुपाद जिस कॉन्टेक्स्ट में चले गए इस पाश्चात्य जगत में, अब देखिए वहां पे हिप्पी लोग थे, और हिप्पी लोग जो थे हर चीज के बारे में विद्रोह करो, ये फिलॉसफी थी उनकी, रिबेल अगेंस्ट एवरीथिंग, रिबेल विदाउट अ कॉज एंड रिबेल विदाउट अ पॉज, ये हिप्पी लोगों की फिलॉसफी थी, रिबेल विदाउट अ कॉज, कुछ कारण नहीं है तो भी विद्रोह करो, और रिबेल विदाउट अ पॉज, और कहीं पर भी मत रुको। तो जब प्रभुपाद इस कॉन्टेक्स्ट में गए तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है विद्रोह करना है ना तुमको, यू वांट टू रिबेल, तुमको विद्रोह करना है ना, आई विल गिव यू फिलोसफिकल रीजनिंग विथ विच यू कैन रिबेल, मैं तुम्हें ऐसा दार्शनिक तत्वज्ञान देता हूं कि तुम जो हो विद्रोह कर सकते हो ऐसे। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको हमारा तत्व ज्ञान दिया कि भौतिकतावादी ये जो सभ्यता है इसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अभी उनको एक दार्शनिक कारण मिल गया, क्योंकि ये भौतिकतावादी संस्कृति जो है वो वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर रही है, ना ही उसमें कुछ ज्ञान है। देयर इज नो एनलाइटनमेंट, देयर इज नो यू नो एनलाइवनमेंट। तो प्रभुपाद जी ने ये दार्शनिक कारण प्रस्तुत किया, तो ही गेव देम अ कॉज टू रिबेल एंड ही ऑल्सो गेव देम अ पॉज टू रिबेल। और ये भी बताया प्रभुपाद जी ने कि अरे कहां पे रुकना है, विद्रोह करते चलो करते चलो करते चलो, लेकिन अभी कृष्ण भावनामृत मिला है ना, बस करो, अभी यहां पे विद्रोह मत करो। तो वेयर टू पॉज, अ गुड फिलोसोफर नोज वेयर टू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसे कहा जाता है। फिलोसोफर व्यक्ति जो है दार्शनिक, वो प्रश्न पूछता है, लेकिन एक अच्छे दार्शनिक को चाहिए कि वो समझे कि कहां पे प्रश्न रुकने भी चाहिए। इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी ने ये सिखाया उन लोगों को, ये सूट और बूट और ये जो पाश्चात्य जीवन शैली या कह सकते वेशभूषा अच्छी नहीं लगती थी, तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा बराबर है आपको अच्छी नहीं लगती, मैं आपको वेशभूषा देता हूँ, पहनो धोती कुर्ता एकदम फर्स्ट क्लास है, और उनके लिए फार आउट ऑफ बीट कहते थे, एकदम वाओ धोती कुर्ता, लोग कहते बेडशीट पहन के घूम रहा है। इस प्रकार से प्रभुपाद उन्होंने कहा कि ये सारी हेयर स्टाइल वगैरह जमती नहीं थी उनको, एकदम टिपिकल ट्रिम्ड हेयर और लंबे बाल, ये फ्लावर चिल्ड्रेन। प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको देता हूँ क्या लंबे बाल वगैरह, पूरा साफ एकदम चकाचक, और फिर बीच में से एक शिखा के रूप में लटकेगा ऐसे, बोले फार आउट ये बढ़िया है एकदम ऐसे, तो उसको स्वीकार कर लिया ऐसे। उनको नाचना बड़ा अच्छा लगता था सारे हिप्पियों को वगैरह, तो प्रभुपाद ने कहा अरे मैं तुमको ऑफिशियल रीजन देता, और नाचते रहते थे रस्ते पे और पुलिस लेके पकड़ के लेके जाती थी। प्रभुपाद ने कहा अभी तुम रस्ते पे नाचो और पुलिस एस्कॉर्ट करेगी तुम। तो रथ यात्रा का आयोजन किया प्रभुपाद ने, और उसमें सब हिप्पी आके नाच रहे थे वगैरह, और पुलिस देख रहे थे, हाँ बच्चा बढ़िया है, पुलिस जो एस्कॉर्ट करते चल रही थी उनको, तो उनको लगा अरे क्या बढ़िया है स्वामी जी, हर चीज को इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने डाउटेल किया ऐसे। और फिर आप देखोगे मंदिरों का भी निर्माण किया, तो वहां आके कभी कभार लोग पारंपरिक भारतीय लोग आके प्रभुपाद जी को बोलते थे आपने मंदिर खोल दिया, इस पे गोपुर नहीं दिख रहा है कहीं पे, गोपुरम गोपुरम होता है ना दक्षिण भारत के मंदिरों में वगैरह, वो दिख नहीं रहा है कहीं पे, और ये जो अर्च विग्रह है वो किस दिशा में उनका मुख है करके, दे आर नॉट फेसिंग द राइट डायरेक्शन ऐसे। इस प्रकार से ये सब चीजें कहते थे। लेकिन प्रभुपाद ने एक बार, प्रभुपाद जी तो एक कन्वर्सेशन में लिखते हैं एकदम कि एक्चुअली भारतीयों को दो ही चीजें आती है बोलते, टू फाइंड फॉल्ट्स एंड टू क्रिटिसाइज। प्रभुपाद जैसे कह रहे बोले दो चीज, दोष दिखाते हैं और आलोचना करते हैं। इस प्रकार से ऑफकोर्स वो एक कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी गुणगान भी करते थे भारतीयों का, लेकिन इस प्रकार से। तो देखिए जब मैं कह रहा हूं कि ये म्यूजियम वाला जो कंसेप्शन है, भक्तिविनोद ठाकुर भी इसकी बात करते हैं अपने कृष्ण संहिता किताब में ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी इसकी दो निबंधों में बात करते हैं एसेज में। तो जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं इस प्रकार का म्यूजियम, ट्रेडिशन यानी बस वैसे के वैसा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए शास्त्र के इसमें एक्सप्लेनेशन में, वो बस वही जो बोला गया है वो अभी भी बोलना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक उदाहरण देते हैं इसको, वो कहते हैं कि ये वंश परंपरा का कुआं, आपने सुना है उदाहरण वंश परंपरा का कुआं। तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो है अपने परिवार से मतलब वंश परंपरा में उसके परिवार के पास एक कुआं था, तो वो कुआं जो है कई जनरेशंस पहले वो कुआं बहुत बढ़िया मधुर जल प्रदान करता था, लेकिन कुछ समय पश्चात पीढ़ी गुजरने के बाद वो कुआं इतना खराब हो गया उसका पानी, हमेशा वहां पे स्थिर गतिहीन होने की वजह से उसमें बहुत सारे मेंढक जो है मर के गिर गए, और सारा जो सड़ा हुआ सामान वगैरह था उसमें फेंका था, तो पानी इतना दूषित हो गया, इतना विषैला हो गया, एकदम गंदा पानी हो गया पूरा पूरा ऐसे। तो भी वो जो ब्राह्मण था वो अपने उस पानी से बहुत आसक्त था ऐसे, वंश परंपरा का कुआं है वहीं से पानी पीऊंगा, बाजू में उसके गांव में गंगा बह रही है, लेकिन उसको लोग बोल रहे कि अरे गंगा से पानी ले, ये सब खराब हो गया है करके, वंश परंपरा का कुआं मैं उससे ही पानी पीऊंगा करके। तो सबको फोर्स किया उसने पानी पीने के लिए, अपनी पत्नी को अपने बेटे को वगैरह, तो इतना गंदा पानी था, इतना विषैला था वो, उसमें कुछ न्यूट्रिशनल तो छोड़ दीजिए, इतना विषैला था, एक एक करके सब मर गए, उसके पत्नी भी मर गई, वो पानी पी के, ये सब बच्चे भी मर गए, सब कुछ मर गए। तो लोगों ने कहा, अरे तेरा क्या हाल हो गया, देख तू अभी तो वो कुआं छोड़, वो पानी नहीं, वंश परंपरा का कुआं है, नहीं छोड़ूंगा मैं ये, इस प्रकार से। तो फाइनली लोगों ने जाके वो वंश परंपरा का कुआं है उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और कुआं ही बंद कर दिया पूरा पूरा, नहीं तो ये भी मरेगा ब्राह्मण करके ऐसे। तो भक्तिसान सरस्वती ये उदाहरण देके बताते हैं कि उसी प्रकार से कभी कभी हम हमारे एक पारंपरिक बैकग्राउंड वाले इससे आते हैं, बैकग्राउंड वाले कुछ कंसेप्शन धारणाओं से आते हैं, परंपरा का कुआं तो उसको लेके आते हैं। अभी उस परंपरा में कुछ जान बची नहीं है, उससे लोगों का हार्डली कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, या उसमें उस प्रकार की शक्ति एक जमाने में थी, जैसे इसमें भी मधुर पानी था पहले, लेकिन उस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार का प्यूरिटी, शुद्धता वगैरह कुछ बचा नहीं है। तो वो जीवन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला सकता है। और यहाँ पे आचार्यों की, श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों की, ज्ञान की गंगा बह रही है बाजू में से, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि अरे ये क्या है, ये गंगा बह रही, बहने दो उसको, मेरे पास वंश परंपरा का कुआं है, इस प्रकार से। तो ये जो तथाकथित आसक्ति है एक्चुअली हमारे बैकग्राउंड से और हमारा जो भी कुछ होगा, यू नो, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग, तो लगता है कि ये सबसे बढ़िया चीज है, लेकिन क्या उसमें वो पोटेंसी है, ये देखना चाहिए। लोगों के जीवन में बदलाव लाने की पोटेंसी जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के ग्रंथों की गंगा के द्वारा दिखती है, क्या वो दिख रही है उसमें, ये चीज देखना चाहिए। नहीं तो हमारा भी वो ब्राह्मण की तरह हो जाएगा, बस वो लेके बैठा है कुआं, लोग तो मर रहे हैं एक के बाद एक, मतलब उनको कुछ लाभ हो नहीं रहा है, भौतिकता उन्हें मार रही है, इस प्रकार से। तो ये स्मार्ट मानसिकता है एक्चुअली, भक्ति सरस्वती कहते हैं इसको स्मार्ट मानसिकता कहते हैं, स्मार्ट नहीं, स्मार्ट स्मार्ट जो स्मृतियों का पालन करता है उसको स्मार्ट कहते हैं, लेकिन भक्तिसान कहते हैं कि इसका, इस शब्द का एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो गया है, देयर इज अ नेगेटिव पेजोरेटिव कॉनोटेशन इस शब्द को आया है जो स्मार्ट है वो। तो मतलब क्या, वो केवल एक्सटर्नल बाह्य रूप से वो आसक्त रहता है चीजों को, एक्चुअली अंदरूनी देखता नहीं है कि अंदर क्या है करके ऐसे। तो बहुत बार ये ट्रेडिशनल जो परंपरावादी है लोग, वो केवल बाह्य रूप से देखते हैं, बाह्य रूप से फॉर्म से अटैच्ड रहते हैं, और किस प्रकार से लोग आके खड़े रहते हैं मंदिर ऐसे, और किस प्रकार से मंत्र बोलते हैं, तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुष, यू नो, ऐसे मंत्र आदि जो बोले जाते हैं संस्कृत में, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उच्चैर अनुदात्त नीचैर, यू नो, उच्चैर उदात्त नीचैर अनुदात्त, ऊपर जो बोलना होता है नीचे बोलना होता है, समाहर स्वरित, ये सारे वैदिक मंत्रों में ये सब होता है, सब कुछ बोलना वगैरह। तो बड़ा इंप्रेसिव है ये, और ये निश्चित रूप से अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा नहीं है, तो ये निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन देखिए, कभी कभार प्रभुपाद जी के शिष्यों पे भी ये आलोचना होती थी, अरे इनको मंत्र ठीक से बोलने को नहीं आते, संस्कृत आदि ठीक से बोल नहीं पाते हैं, भले ही इस्कॉन के भक्तवृंद को ठीक से मंत्र बोलने को नहीं आएंगे, संस्कृत के श्लोकों का ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे, लेकिन वो संस्कृत के उन श्लोकों को दिन रात जी रहे, वो मूर्तिमंत स्वरूप है उस श्लोक के अर्थ का, वो जो समर्पण की भावना है, वो समर्पण की भावना हमें दिखता है कि कितने सारे परंपरावादी लोगों में भी नहीं दिखती, जिस प्रकार की परंपरा की भावना श्रील प्रभुपाद ने अपने फॉलोअर्स, अपने शिष्यों में और सारे इस्कॉन के भक्तों में जिस प्रकार की भावना डाली है, वो समर्पण की भावना, तो ये बहुत रेयर है, ये दिखता नहीं है कभी भी, हम लोग देखते हैं। तो भले ही कोई मंत्र वंत्र बोल पाए या फिर कुछ ट्रेडिशनल रूप से यंत्र तंत्र मुद्रा पूजा वो सब कर पाए, लेकिन उसमें समर्पण की भावना देखनी चाहिए, समर्पण कितना है करके। बहुत बार चार नियम नहीं पालन कर पाते लोग, भले ही बहुत कुछ प्रकांड, यू नो, विद्वत्ता और प्रकांड सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन चार नियम में उधर ही फेल, स्क्रीनिंग टेस्ट में ही उधर ही चले गए, और फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ गए, चाय कॉफी नहीं छूट रहा है ऐसे एकदम, थोड़ा मंत्र विंत्र बोला है, थोड़ा कॉफी मार के आता हूं इस प्रकार हमारे एक्चुअली इस्कॉन में आने के बाद भक्त लोग 2 महीने में सब कुछ, ये जो स्वाभाविक प्रारंभिक प्रिंसिपल्स है, नियम है, उसको पालन कर पाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे कुछ दोषारोपण नहीं है करना है किस चीज पे, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि एक आध्यात्मिक प्रगति की कसौटी है व्यक्ति की समर्पण की भावना, कितना समर्पण है उस व्यक्ति में, ये चीज को देखना चाहिए रादर देन एक्सटर्नल्स। वो एक थोड़ी स्मार्ट प्रकार की मानसिकता है, क्योंकि किस प्रकार के बैकग्राउंड से व्यक्ति आता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं प्रारंभ में वो उदाहरण दे रहा था ना कोचिंग क्लासेस का, तो अगर कोई एकदम साधारण छात्र को आप लेके आते हो तो स्वाभाविक रूप से है जब उसको ऊपर लेके जाते हो तो सारे निकषों पे हो सकता है वो ही मे नॉट बी परफेक्ट, है कि नहीं, लेकिन उसने कहां से कहां तक का जर्नी यात्रा जो है वो की है वो देखना चाहिए, किस प्रकार के बैकग्राउंड से आया और कहां तक वो जो है लेके जा रहा है। इस प्रकार से जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से वापस आए वृंदावन में पहली बार, तो वृंदावन में 2 बस भर के विदेशी भक्तों को लेके आ गए श्रील प्रभुपाद जो है, पूरे 2 बस भर के। तो फिर व्रजवासियों को तो बहुत आनंद हुआ कि अरे हमारे हमारे प्रभुपाद क्योंकि प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे और सारे व्रजवासी उनको अपने ही अपने व्रजवासी की तरह ही ट्रीट करते थे। तो हमारे प्रभुपाद जी देखो कितने विदेश में प्रचार करके लेके आए भक्तों को वगैरह, इस प्रकार से तो बहुत खुश हो गए। लेकिन कुछ प्रभुपाद जी के पहले के कॉन्टेक्ट थे और कुछ गुरु बंधु भी थे उनके, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो जो फंक्शन किया था प्रभुपाद जी को ग्रीट करने का, वेलकम प्रभुपाद का स्वागत करने का, उसमें कहा एक्चुअली ठीक है हाँ स्वामी जी, एक्चुअली स्वामी जी बिजनेसमैन थे तो पहले से बिजनेसमैन होने के कारण लोगों में इंट्रैक्शन बहुत बढ़िया करते थे ऐसे, तो क्योंकि वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी पता है किस प्रकार से करना है इसलिए स्वामी जी को सफलता मिली ऐसे, तो बहुत इंटेलिजेंट बिजनेस थे पहले से, इस प्रकार से बोल रहे। और फिर कह रहे हैं कि एक्चुअली हम लोगों का देखा जाए तो हम लोग हमेशा ही शुद्ध जीवन जिए हैं, हम लोग कभी आश्रम छोड़ के बाहर नहीं गए और हम लोगों ने नीच लोगों का संग नहीं किया कभी, हम लोग हमेशा ही वैष्णव शुद्ध संग में रहे, तो इसलिए हम लोग जो है इस प्रकार से रहे हैं, हमेशा ही शुद्ध रखा है खुद को वगैरह। एक्चुअली अंग्रेजी में कहते हैं कि क्रिटिसिज्म बाय फेंट प्रेज, ये फ्रेज है आपने सुना है, किसी को अगर आप बोलते हो कोई अच्छा भोजन बना के लेके आया और बोलता है कैसे लगा, खा सकते हैं खाने खाने जैसा है, कैसा भोजन बनाया हाँ खाने जैसा है ठीक, यू नो एडिबल ऐसे, तो इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म बाय फेंट प्रेज। अरे तू तो क्या बोल रहा है, खाने जैसा है वो, उसकी मधुरता के बारे में कुछ बोलो कैसा बना है वगैरह बोलो। लेकिन तो इसी प्रकार से कभी कभार हम लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति का प्रभुपाद जी का इस प्रकार का उन्होंने प्रचार किया है, ऐसे लोगों को इस स्थिति से लेके आया हुआ है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी उस उतनी सराहना नहीं हुई ऐसे। तो निश्चित रूप से हम तो किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन एक मानसिकता बता रहा हूं कैसी होती है मानसिकता ऐसे। एक्चुअली प्रभुपाद जी का देखा जाए तो किस प्रकार, अरे मानिए कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में सारे अपैरेटस सारा साहित्य है, पूरा फौज है उधर, सारे जो भी नर्सेस और ये इन लोगों का वगैरह, और ऐसे विशाल हॉस्पिटल में आके कुछ लोग मरीज वगैरह ठीक हो रहे, तो वो डॉक्टर को क्रेडिट है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है करके सबको मरीज वगैरह ठीक कर रहे। अरे कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसके पास ना सेटअप है, ना जिसके पास नर्स है, ना वार्ड बॉय है, कुछ नहीं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जाके जिधर लोग मर रहे साइट पे जाके हजारों लोगों को बचा रहा है, अरे उसका कितना ग्लोरी है। उसके पास ना एपेटस है, ना उसके पास पूरा ये सब कुछ संसाधन है, लेकिन आप देख रहे हो कि अरे वो हजारों लोगों को बचा रहे, तो कौन श्रेष्ठ है देखा जाए तो इस प्रकार से है। और ऐसे मरीज, खांसी वाले मरीज नहीं, केवल आके खांसी घो आके खांसी है और वगैरह, अरे कैंसर और इस टाइप के मरीज, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रभुपाद जी का जो कॉन्टेक्स्ट था, प्रभुपाद जी की जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस में वो एक एक अच्छा एक प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं इट वॉज फॉलन बाय इवन द स्टैंडर्ड ऑफ यूएसए, हिप्पी लोग इतने गिरे हुए थे दैट यूएसए अमेरिका के स्टैंडर्ड से भी वो पतित थे बहुत इस प्रकार से। तो मैं कह रहा हूं कि तो तुम्हारे पास आने वाले मरीज को जस्ट खांसी नहीं हुई है या बुखार नहीं हुआ है, तुम्हारे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो एकदम टर्मिनल डिसीज पे है, और तुम्हारे पास सेटअप नहीं है, तुम्हारे पास डॉक्टर्स नहीं है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो भी तुम उनको ठीक कर रहे हो और ऐसा ठीक कर रहे हो कि नाच रहे हैं सब, एकदम इस प्रकार का स्वास्थ्य उनको प्रदान कर रहे हो, तो किसमें ग्लोरी है? इस चीज को समझना चाहिए, है कि नहीं? तो ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेषता है, ऐसे लोगों को इस बैकग्राउंड से उठा के लेके आए और उनको ठीक नहीं किया स्वास्थ्य, उनको डॉक्टर बना दिया है कि नहीं? उनको डॉक्टर बना दिया, और डॉक्टर बना के वो लोग अभी तथाकथित जो डॉक्टर समझ रहे हैं लेकिन मरीज है उनको ठीक कर रहे हैं। क्या रे भाई तू तो मरीज है करके, नहीं मैं डॉक्टर हूँ, वंश परंपरा से डॉक्टर में हूँ उसको नहीं आप थोड़ा जरा मरीज है आप ठीक हो जाइए करके। सो दैट्स ग्लोरी ऑफ प्रभुपाद, किस कॉन्टेक्स्ट में किया है और किस प्रकार का ये किया है। समर्पण की भावना वाले ऐसे भक्तों को प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, कहाँ है उदाहरण? एक्चुअली कहीं नहीं है उदाहरण ऐसे, यू नो। तो भले ही लोग अपने वंश परंपरा के कुएं से आसक्त रहे, रहने दो अपने को कुछ, यू नो, हम लोग प्रभुपाद जी के गंगा के प्रचार रूपी गंगा के पानी से शुद्ध जल जो है उसको प्राप्त करेंगे। अर्थात हम लोग ये चीज नहीं कह रहे कि जो संस्कृति है या संस्कृत है इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से आवश्यकता है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए इस्कॉन साधारण लोगों को आकर्षित करता है, असाधारण लोगों को भी आकर्षित करता है। इस्कॉन अट्रैक्ट्स पीपल हु आर ऑर्डिनरी एंड ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है? तो अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हो और आप इस्कॉन में जो जिस प्रकार की संस्कृति दी जा रही है, जिस प्रकार का कल्चर दिया जा रहा है, उसको स्वीकार करते हो, तो ऑलरेडी कोई अगर बहुत नीचे के बैकग्राउंड से आता है और उसको स्वीकार कर रहा है तो बहुत आगे चला गया है वो, दैट इटसेल्फ इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई बहुत असाधारण बैकग्राउंड से पहले से आता है तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या भिखारी नहीं है? हमारे संप्रदाय में और प्रभुपाद जी के बुक्स में, प्रभुपाद जी के आचार्यों के ग्रंथों में क्या कोई कुछ कमी नहीं है? इतना है उसमें कि आपकी जिंदगी निकल जाएगी पढ़ने में। ऐसे अभी मैं बता रहा था 5 श्लोकों पे 100 पेजेस का तात्पर्य लिखा है, पढ़ो। तुमको एनालिसिस चाहिए ना तो पढ़ो, इतना संस्कृत के इस लेवल का एनालिसिस किया है शिलाजी गोस्वामी ने, केवल 5 श्लोकों पे 100 पेज लिखे हैं इस प्रकार से। या फिर अन्य अन्य ग्रंथ है, एक एक आचार्य लेंगे उनके ग्रंथ पढ़ने के लिए। मैं तो बोल रहा हूं पहले तो प्रभुपाद के ही ग्रंथ नहीं पढ़ते लोग तो पहले तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने में जिंदगी निकल जाती है कि नहीं? प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके पश्चात अगर आपको आचार्य के भी ग्रंथ पढ़ने हैं, मानिए एक एक आचार्य लीजिए, बलदेव विद्याभूषण, उनके ग्रंथ पढ़ने में जिंदगी निकल जाएगी। श्री जीव गोस्वामी, उनके ग्रंथ पढ़ने में जिंदगी निकल जाएगी। श्री रूप गोस्वामी, उनके ग्रंथ पढ़ने में जिंदगियां निकल जाएगी इतना कुछ है उसमें। तो ये सारा टेरिटरी, ये सारा जो खजाना है आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है और आपको लगता है क्या है इस्कॉन, मतलब ठीक है ट्रेडिशनल नहीं है। अरे ट्रेडिशनल, अरे भाई तो देख पहले कितना ट्रेडिशनल है कितना। गौड़ीय वैष्णव साहित्य नाम की एक किताब है, क्या कर रही है वो? केवल गौड़ीय वैष्णवों ने जो जो ग्रंथ लिखे है उसको केवल बता रही है, किसने क्या लिखा, इसने ये लिखा और एक एक पैराग्राफ में उसका वर्णन है क्या लिखा करके। गौड़ीय वैष्णव साहित्य इतना ही है, उसमें किताब में क्या लिखा है नहीं है, केवल परिचय देने वाली। 300 पेजेस की किताब है, 300 पेजेस गौड़ीय वैष्णव साहित्य, हरिदास दास नाम के गौड़ीय वैष्णव ने लिखी। आप देखो 300 पेजेस जस्ट ट्राइंग टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ इन लोगों ने क्या 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 लिखा है करके इस प्रकार। तो हम लोग वही कह रहे हैं कि संस्कृत और संस्कृति आदि जो भी कुछ पारंपरिक लक्षण है कोई संप्रदाय के, वो तो निश्चित रूप से जरूरी है। अभी हम स्वयं कुछ, हमारी छोटी बुद्धि से हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं संस्कृत पढ़ने का, और यू नो आचार्यों को, प्रभुपाद जी ने जहां से प्रेरणा ली है उन मूल ग्रंथों को भी थोड़ा बहुत पढ़ने का वगैरह ऐसे इस प्रकार से। तो हम लोग तो उसके विरुद्ध नहीं है निश्चित रूप से। जो साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और प्रभुपाद जी की संस्कृति से तुष्ट है, बहुत अच्छा है। आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हो तो हम लोग कहते हैं आओ मैदान में, फिर मैदान में आओ, फिर तुम भी ये सारी चीजें जो है इसको एक्सप्लोर करो, पढ़ो ऐसे। लेकिन ये कुछ चीजें बगैर एक्सप्लोर करे, यू नो, जैसे ये मेरे मित्र कह रहे थे वगैरह, अगर किसी का ऐसा कंसेप्शन है कि अरे यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रेडिशनल नहीं है करके वगैरह, साधारण लोगों के लिए ठीक है। एक्चुअली वो मायावादी लोग कहते हैं ना, ये शास्त्रों का ज्ञान है भक्त लोगों के लिए, भक्ति बोली है, बुद्धिमान लोगों के लिए वेदांत इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से ये मेंटालिटी आती है कभी, साधारण लोग जो है वो ठीक है इस्कॉन में वगैरह ठीक है, बुद्धिमान ट्रेडिशनल लोग जो है कुछ और करने चाहिए वो इस प्रकार से। लेकिन ये आचार्य जो है, जो हमें उन्होंने जो दिया है उसमें यह धारणा नहीं है बिल्कुल। दो मिनट में अंत करूंगा मैं। तो परंपरा जो है एक म्यूजियम नहीं है, इसको अंत करके बोलूंगा, लेकिन परंपरा एक उद्यान है। भक्ति विनोद ठाकुर भी इसकी बात करते हैं, परंपरा जो है एक उद्यान की तरह, इट्स लाइक अ गार्डन। परंपरा में हम लोग उस भक्ति वाले पुष्प लता, भक्ति वाले लता के ऊपर या भक्तों के पुष्प जो है वो उगाना चाहते हैं, एक उद्यान की तरह। तो अगर उस उद्यान में बगीचा जो 5000 साल पहले था और आज 5000 साल बाद अगर उसमें पुष्प आ रहे भक्ति के, तो दैट्स इट, दैट्स द प्रोसेस। उसमें भक्ति के पुष्प जो है वो दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यही परंपरा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि परंपरा निष्ठा यानी फिडेलिटी टुवर्ड्स द परंपरा मीन्स फिडेलिटी टुवर्ड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द परंपरा। वेरी अमेजिंग स्टेटमेंट। बोलते हैं फिडेलिटी टुवर्ड्स परंपरा, परंपरा निष्ठा यानी जो परंपरा की वो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या कहेंगे, जो भी गतिशीलता, यू नो डायनेमिज्म, उस गतिशीलता के प्रति निष्ठा, ये भी परंपरा की निष्ठा की एक बात है। इस प्रकार तो यहां पे आप कुछ भारत में पौधे उगा रहे हो सकता है जब अमेरिका में उगाने हैं उसी पौधों को तो अलग कंडीशंस चाहिए, अलग प्रकार से उसको जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। एक मुझे भक्त बता रहे थे कि पाश्चात्य देशों में तुलसी जो है वो उगती नहीं है बहुत बार, तो तुलसी जो है बड़ा कठिन होता है उगाना, तो वो बल्ब वगैरह लगा के, लाइट्स लगा के, आर्टिफिशियल लाइट देके फिर उसको उगाने का प्रयास करते बहुत बार। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे भारत में तो स्वाभाविक रूप से उगती है, आपने बल्ब लगा दिया इधर भी उधर जैसे है वैसे इधर भी लगा देना, जल जाएगा वो ऐसे। तो उस प्रकार से कैसे उससे पुष्प प्राप्त करे उस उद्यान से, इसमें सारे डिटेल्स जो है बदल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उस चीज को समझे। परंपरा यानी परंपरा का प्रयोजन, और वो अगर सिद्ध हो रहा है तो दिखता है कि वो परंपरा निष्ठा, निष्ठा के साथ परंपरा आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार से तो लोगों का बैकग्राउंड, मानसिकता, देश, काल, पात्र, इस प्रकार से ये परंपरा और नूतनता का संगम जो है श्रील प्रभुपाद जी ने हमें हमारे जीवन में दिखाया है ऐसे। तो हो सकता है श्रील प्रभुपाद जी जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रचार किए उससे आज का कॉन्टेक्स्ट भिन्न हो रहा है, तो इसलिए देश, काल, पात्र में डायनामिज्म होता है हमेशा। उसमें हो सकता है हमारे भी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करना पड़े वगैरह, लेकिन फाइनली देखना चाहिए फले न परिचयते, फल क्या मिल रहा है। अगर फल वही पे लेके आ रहा है, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे लेके आ रहा है, लोगों को भक्त बना रहा है, तो निश्चित रूप से समझते हैं कि ये जो परंपरा की निष्ठा है वो वहां पे बरकरार है, परंपरा की निष्ठा एकदम उचित रूप से वहां पे जो है दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार से तो यही चीज है इस श्लोक के अंतर्गत मैं इस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बोलना चाहता था। तो हमने बेसिकली चार चीजों के ऊपर चर्चा की, श्लोक के बारे में कैसे अविद्या जो है समस्त बंधनों का कारण उसकी चर्चा की, आचार्य कैसे देशकाल पात्र के अनुसार श्लोकों की व्याख्या करते हैं उसकी चर्चा की, अंत में हमने चर्चा की कैसे नूतनता और ट्रेडिशन परंपरा इसका संगम होना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद ने ये कैसे करके दिखाया, और इसमें हम पूरी श्रद्धा के साथ जीते हैं और श्रद्धा के साथ इस आंदोलन को बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। तो समय तो हो गया है, लेकिन अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो पूछ सकता है, अगर अन्यों को सेवा है तो निश्चित रूप से जा सकते हैं। यस प्रभु,
आपने लास्ट में थोड़ा टच किया हो, आप जैसे बोल रहे थे पूरे क्लास में कि पहले ऐसा था प्रॉब्ली भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी के टाइम में कि इस कौन को बोला जाता था कि आप ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट आज का समय ऐसा है कि उस वक्त इस कौन का ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है,
सबसे ज्यादा।
तो हम लोग कर रहे हैं वो लेवल पर लोग को बहुत ज्यादा लगता है, अभी पूरा चेंज हो गया है। पहले लोग वैदिक संस्कृति का पालन करते थे और हम लोग भक्ति थोड़ा लगता है कि हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाते, बट उनको लोग को आजकल ये भी बहुत ज्यादा डिटेल लगता है कि बहुत स्पिरिचुअलिटी। इसलिए
महाराष्ट्र के ब्राह्मण इस्कॉन को तीव्रवादी कहते हैं, फैनेटिक्स, ये तीव्रवादी, तीव्र एकदम ऐसे करके। तो निश्चित रूप से तो जितने तीव्रवादी कह रहे हैं और जितने नॉट सफिशिएंट ट्रेडिशनल कहने वाले में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप जैसे कह रहे हो तीव्रवादी कहने वालों के नंबर बढ़ गया अभी बहुत ज्यादा, और जो कहते हैं कि ज्यादा पारंपरिक नहीं है वो बहुत छोटा सा नंबर है। यस दैट्स राइट। यस
तो उनके लिए
यस
हरे कृष्णा, प्रभुवाद का जो ग्रंथ भंडार है बहुत है, तो लेकिन मुझे ऐसा जिज्ञासा है कि बाकी सब वैष्णवों का जो वेदावस में सब है वो पढ़ने की जिज्ञासा है, तो क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए?
एक्चुअली सबसे जरूरी है पहले तो कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। पहले तो सारे ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए बहुत, मतलब पूरा पूरा प्रभुपाद ने जो भी कुछ लिखा है, और बहुत गहराई से भी पढ़ना चाहिए। और फिर उसके पश्चात जो आपको आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं उनकी अनुमति से फिर आप कोई विशेष पर्टिकुलर ग्रंथ पढ़ सकते हो। जैसे इन ग्रंथों में भी बहुत स्पेक्ट्रम है, पूरा ग्रंथों में भी एकदम इस स्तर से लेके एकदम उच्चतम स्तर तक सारे ग्रंथ है। तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हमने कोई उच्चतम ग्रंथ को पकड़ लिया और फिर वो पढ़ के पूरे विमोहित हो गए। तो इस क्षेत्र में मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी है, अगर हमने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना यानी इसका ये अर्थ भी नहीं, एक्चुअली प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम जिंदगी भर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि अभी आचार्य का पढ़ना है खत्म प्रभुपाद जी बस फिनिश अभी बाजू में रख दो प्रभुपाद जी के ग्रंथ, नहीं, ये तो हमारे संप्रदाय के ग्रंथ है, ये तो हम जिंदगी भर पढ़ेंगे, उसको तो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आचार्यों के ग्रंथ कोई पढ़ने हैं तो उसको मार्गदर्शन में और उचित मात्रा में उचित स्तर का किताब जो है उसको पढ़ना चाहिए। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जो उस क्षेत्र के जानकार है उनसे मार्गदर्शन ग्रहण करें। ऐसे जैसे प्रारंभिक अवस्था में तत्व संबंधी ग्रंथ जो है वो ज्यादा पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे प्रचार में भी बहुत कुछ लाभ हो सकता है। प्रभुपाद जी ने एक्चुअली अपने तात्पर्य में सब कुछ लिख दिया है ही उसमें, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो फिर आप समझ पाते हो कि अरे हाँ है ऐसे, अरे देखिए ये है करके, इधर ये यहाँ से आ रहा है ये। एक बार मैंने एक अन्यत्र वृंदावन में दिखा दिया था कि कैसे प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य, सारे के सारे तात्पर्य सात आचार्यों के कॉमेंट्री से थे, 7 different आचार्य एक ही कॉमेंट्री में प्रभुपाद जी ने भागवतम के, भागवतम का बता रहा हूँ, 7 आचार्यों के कंसेप्ट को लिया था उसमें एकदम, वो दिख गया लोग बोले अमेजिंग प्रभुपाद जी कितने विद्वान रहेंगे कि इस प्रकार से 7 आचार्यों के तात्पर्य लिख दिए है करके। तो ये बहुत बढ़िया है, प्रभुपाद जी ने लिख ही दिया है, लेकिन अगर कोई जानना भी चाहता है कि कैसे लिखा है एग्जैक्टली क्या लिखा है ऐसे, तो वो एक फायदा हो जाता है आचार्य के ग्रंथ पढ़ से, पढ़ के आप समझ भी पाते हो कि प्रभुपाद जी एग्जैक्टली ये चीज लिख रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन जैसे मैं कहूँगा उसमें निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, ये तो हमारे ही ग्रंथ है, हमारी प्रभुपाद जी की परंपरा जो है उसमें प्रभुपाद जी भी सबसे महत्वपूर्ण एक यू नो यू कैन से लाइक एक सुनहरी कड़ी है उसकी, लेकिन श्रृंखला तो है ना निश्चित रूप से, तो केवल श्रृंखला को बड़े ही सुनहरी कड़ी हो उसको बाजू में नहीं निकाल सकते आप, चैन में ही होना चाहिए उसको, लेकिन तो भी जो सुनहरी श्रृंखला है उसको सुनहरी श्रृंखला समझना चाहिए, इट इज स्पेशल निश्चित रूप से। तो प्रभुपाद जी का जो प्रेजेंटेशन है हमारे संप्रदाय के ग्रंथों का वो सबसे उत्तम प्रेजेंटेशन है लाइक दैट ऐसे, तो मार्गदर्शन के रूप से पढ़ सकते हैं फिर श्योर। ठीक है, कुछ आप कुछ कहना चाहिए?
आप बहुत सुंदर बता रहे थे कि ट्रेडिशन और इनोवेशन वाला, तो आपने बताया कि परंपरा का लाइक फिडेलिटी टुवर्ड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, तो मतलब दोनों तरीके के परेशानी आते हैं, एक तो कभी कभी परंपरा के नाम पे लोग ज़्यादा ही
ऑर्थोडॉक्स
हो जाते हैं, और कुछ लोग डाइल्यूट हो जाते हैं इनोवेशन के नाम पे।
एग्जैक्टली,
तो आपने बोला प्रयोजन बना के रखना चाहिए, भक्ति के फल, भक्ति के फूल आ रहे हैं उद्यान में तो उसको देखते रहें।
yes.
तो भक्ति के फूल कितने समय में आएंगे उसको भी देखना पड़ता है, या मतलब जैसे इनडायरेक्ट प्रीचिंग होता है
करेक्ट,
तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग अगर इनडायरेक्ट ही रह जाए तो उसको भी चलेगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए जैसे आपने बोला जिस भी स्तर पर उससे एक स्तर ऊपर लेके आया कम से कम कुछ, लेकिन वो इनडायरेक्ट में रह गया, मतलब उसको भक्ति के संदर्भ में उसको डाला नहीं, शायद उसको कुछ अच्छे संस्कार मिल गए, तो शायद वो बुरे संस्कार से अच्छे संस्कार में आ गया, तो इनडायरेक्ट में रह गया, तो उतने में भी उसको बोला जाएगा कि वो भक्ति के फूल लगा दिए गए या?
ओके, बहुत अच्छा प्रश्न, यस। तो इसके ऊपर भक्ति सांसद भी चर्चा करते हैं कुछ उनके एक हिस्से में, तो दो निश्चित रूप से प्रचार भी करते हैं कभी कभी, तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग भी होता है, कभी डायरेक्ट प्रीचिंग होता है, भक्ति के शुद्ध भक्ति के तत्वों को सीधे बोले, और दूसरा होता है कि लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, जैसे यहाँ पे प्राचीन बरहिषद, तो उसको नारद मुनि एक कथा के माध्यम से समझा रहे, लेकिन केवल एक दो घंटे में समझा दिया, ठीक है, दो घंटे के लिए, यू नो, वो जो एडजस्टमेंट हुआ है कॉन्टेक्स्ट का, जो भी कुछ है, एक दो घंटे में उसमें उन्होंने वहां को उसको उसके स्तर से शुद्ध भक्ति के स्तर पे ला दिया, ठीक है। तो ये चीज है, अभी कलयुग के प्रभाव के कारण ये जो टाइम है हो सकता है बहुत बढ़ जाए एकदम। आप इनडायरेक्ट प्रीचिंग करके लोगों को एक लेवल तक लाना चाहते हो और फिर उस लेवल से वो भक्ति का स्वीकार कर सकते हैं, तो कितना वो जो समय है कितने समय उसको मानना चाहिए वगैरह, जैसे फूल भी उगते हैं तो अलग अलग समय लेते हैं, कुछ फूल 2 महीने में उग जाते हैं, कुछ फूल जो होते हैं 4 महीना ले लेते हैं उगने के लिए, ऐसे। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन की जरूरत है। जहां पे आप जैसे बोल रहे हो कि ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, इसमें दोनों साइड में अगर हो सकता है कि व्यक्ति फिसल जाए, तो कितना हद तक इसको स्वीकार कर सकते हैं ये कोई आचार्य गुरु महाराज या गुरु साधु शास्त्र वाले व्यक्ति समझा सकते हैं। ऐसे सच भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अगर अंत में कोई व्यक्ति जो है उसके जीवन में भक्ति के मार्ग पे आता हुआ दिख रहा है, तो फिर उस प्रचार को एक बुद्धिमान प्रचार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसे अभी लेकिन वैसी इनडायरेक्ट प्रीचिंग कौन करे, किसने करनी चाहिए और कौन उसका अधिकृत अधिकारी है वगैरह, इसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा जो है वो हो सकती है। लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि ये गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से, मार्गदर्शन से उनको हम पूछ सकते हैं कि कहाँ तक ये जो ब्रेड्थ है, स्पेक्ट्रम है इस प्रकार की इनडायरेक्ट प्रीचिंग का, उसको स्वीकार कर सकते हैं। एज सच कोई व्यक्ति अगर उसके जीवन में भक्ति के स्तर पे आते हुआ दिखाई देता है तो हमारे आचार्य स्वीकार करते हैं कि उसको वो एक उत्तम प्रचार माना गया है इस प्रकार से। तो ये मैं कहूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अन्य कोई तो क्षमा कीजिए अगर कुछ मैंने गलत कहा हो या फिर किसी चीज की वजह से आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं बस इस संगम को थोड़ा समझाना चाहता था श्रील प्रभुपाद जी के कॉन्टेक्स्ट में। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।